ओम शांति। एक व्यक्ति कभी भी शादी नहीं करता है और बूढ़ा हो जाता है, लगभग 90 वर्ष, और अभी तबीयत बहुत खराब होती है और मरने को होता है, तो एक जिज्ञासु आता है और पूछता है कि आपने कभी भी शादी नहीं की, कुछ तो कारण होगा, कोई तो राज होगा, और क्योंकि अभी तो आप इस संसार से विदा हो रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा राज था, क्यों आपने शादी नहीं की, कुछ तो होगा ही। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ राज तो है। तो जिज्ञासु कहता है, अब मुझे नहीं लगता अगर आप ये राज बता दो तो आपको कोई दिक्कत होगी, इससे होगा तो दूसरों को शायद फायदा ही होगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं विवाह के विरुद्ध हूं, परंतु मुझे आज तक कभी भी परफेक्ट वुमन मिली ही नहीं, संपूर्ण स्त्री आज तक कभी भी नहीं मिली। तो वो जिज्ञासु पूछता है, इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा संसार, आपको एक भी नहीं मिली? तो वो कहता है, मिली तो थी। तो कहता है कि फिर क्यों तुमने उससे शादी नहीं की? तो वो आदमी कहता है, क्योंकि वो एक परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढ रही थी। ये तो ठीक बात है कि हम परफेक्ट को ढूंढे, पर परफेक्ट मिलने के बाद वो भी तो किसी परफेक्ट की तलाश में है, और यदि हमने तो चुन लिया परंतु उसने यदि नहीं चुना तो भी तो मुश्किल है। आत्मा परमात्मा को सदियों से ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते बहुत लंबे समय के बाद जब वो मिल जाता है और वो पूरा ठोक बजा कर देख लेती है कि यही है परफेक्ट गॉड, इतना परफेक्ट काफी नहीं है, और भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भी किसी परफेक्ट की तलाश में है, और यदि हम वो परफेक्ट नहीं है तो वो हमें भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो आज की मुरली में बाबा क्यों आए है, तीन कारण दिए। भगवान धरती पर क्यों आया? एक, किस लिए? मिलन मनाने के लिए। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, अर्थात तुमने बहुत स्नेह किया है, अर्थात तुमने बहुत प्यार किया है, अर्थात तुमने उसे बहुत पुकारा है। अब वो आया है, घूंघट के पट खोल, अब तो ये पिपिया बुलाए, अब वो आया है। तो क्यों आया है? स्नेह का रिटर्न देने के लिए। कौन से बच्चों से मिलने आया है? स्नेही। दूसरा कारण क्यों आया है? मिलन मनाने के लिए, स्नेह का रिटर्न देने के लिए, और तीसरा फल देने के लिए। सुबह खाए ना 10 फल, स्नेह का प्रत्यक्ष फल देने के लिए इन तीन कारणों से वो आया है। स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने और स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए वो आया है। स्नेह का रिटर्न, एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। तीन बातें यहां बाबा ने बताई है, भक्ति मार्ग में क्या क्या था और ज्ञान मार्ग में क्या क्या है। वहां क्या था प्रभाकर भाई, वहां क्या था? वहां भक्ति थी परंतु शक्ति नहीं थी। शक्ति अब मिली है, कौन सी शक्ति अब मिली है? कौन सी? अधिकारीपन की शक्ति अब मिली है। वहां क्या था? भावना थी परंतु वो भावना कैसी थी? उसमें कामना भरी हुई थी। क्या थी उस भावना में? कामनाएं थी। वो भावना कैसी थी? अल्पकालीन थी। वो भावना कैसी थी? और एक शब्द है मुरली में, भावना। भिखारी पने की भावना, मांगना था वहां पर। यहां कौन सी भावना है? अधिकारीपन की भावना। वहां पर स्नेह था, प्रेम था, परंतु उस प्रेम में दो चीजें नहीं थी, संबंध नहीं था और पहचान। परंतु स्नेह बहुत था, पहचान नहीं थी परंतु स्नेह था। उसी स्नेह के रिटर्न, उसी स्नेह का रिटर्न देने के लिए अब वो आया है। वो स्नेह का प्यासा और भावना का भूखा है, ऐसा भक्ति में उसके लिए गायन है। तो बाबा आए हैं मिलन मनाने के लिए, बाबा आए हैं स्नेह का रिटर्न देने के लिए। चाहे तुमने कितने ही अपकार किए हो, फिर भी वो आया है। वो आया है किस लिए? फल देने के लिए। कौन सा फल देने के लिए? स्नेह का प्रत्यक्ष फल देने के लिए। एक सूफी कहानी है जिसमें एक महिला, एक तपस्विनी, एक फल की तलाश में होती है। वो जो फल होता है वो स्वर्ग का फल होता है और उसे वो स्वर्ग का फल चाहिए होता है, हेवेंस फ्रूट। और उस फ्रूट की तलाश में वो कई जगह जाती है। अंततोगत वह एक दरवेश के पास आती है जो एक झाड़ के नीचे बैठा होता है और उससे वो पूछती है, ऐसा फल कहाँ मिलेगा कि जो मैं यदि खा लूं तो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लूं। तो वो दरवेश उससे कहता है, तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें वो फल मिल जाएगा। परंतु उसके पास समय नहीं होता है और ना ही धैर्य। वो दरवेश कहता है, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो तुम्हें सालों साल तक भटकना पड़ेगा। परंतु वो फिर भी नहीं सुनती और उसको छोड़कर चली जाती है। पहले जाती है हकीम के पास, फिर मजूब कोई, फिर आलिम, अलग अलग नाम है सूफी साहित्य में। किसी को हकीम कहते हैं, किसी को आलिम साइंटिस्ट, किसी को मजूम मैडमैन। फिर वहां से और कहीं जाती है सबर, अलग अलग जगह पर जाती है। 30 साल तक भटकती रहती है और उसे वो फ्रूट नहीं मिलता है और अंत में एक दिन अचानक मिल जाता है जहां पर लिखा भी होता है स्वर्ग के द्वार, और वहां पर वो झाड़ होता है और जहां वो फ्रूट, वो फल टंगा हुआ होता है। तो वो जाती है और देखती है कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो उसे तब मिला था, ये तो वही है। और वो उससे पूछती है, क्या तुम ही हो कस्टोडियन ऑफ दिस हेवन्स फ्रूट, क्या ये स्वर्ग का जो फ्रूट है इसके रखवाली करने वाले तुम ही हो? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो दो उत्तर देता है। एक तो ये कि मैंने बताया था पर तुमने सुना ही नहीं, और दूसरा ये जो झाड़ है इसमें फल जो आता है वो 30 साल और 30 दिन के बाद ही आता है। यदि मैंने तुम्हें बता भी दिया होता तो भी तुमको रुकना पड़ता था 30 साल और 30 दिन तक। ये ऐसा फल है। बाबा जो फल दे रहे हैं वो कितने साल के बाद मिलता है? यदि तुम्हारी भावना कितनी भी श्रेष्ठ हो होती द्वापर, तो भी तुम्हें वो फल द्वापर से नहीं मिल सकता है, क्योंकि फल लगने का जो समय है, प्रभु मिलन का मौसम, याद है ये शब्द? कब था? 3-4 साल पहले अव्यक्तवाणी, फर्स्ट अव्यक्तवाणी थी डबल विदेशियों से मुलाकात, 2011 शायद, जिसमें बाबा ने कहा था ये प्रभु मिलन का मौसम है। तो ये मौसम कब आता है? अभी आता है, संगम पर आता है, 5,000 साल के बाद आता है। तो सुबह भी हमने चर्चा की थी 10 प्रकार के फल, थोड़ी सी विस्तार में आप चर्चा करेंगे। वैसे तो फल एक ही है, उसकी ये विस्तार है। वैसे तो फल एक ही है, उसकी ये 10 बातें हैं, या यू कहो कि 10 फल भी है, फल की शाखा है। पहला फल था किसको दिया था सुबह? फल वाले आए कि नहीं सुबह? बाबा ने सुबह पिकनिक के विषय में भी बताया। पहले हम पिकनिक की चर्चा करेंगे। पिकनिक में कौन कौन सी, अगर कहीं पिकनिक जाना है तो क्या क्या सोचा जाता है? पहले तो स्थान, जाना कहाँ है पिकनिक। दूसरा, अकेले जाना है, ग्रुप में जाना है, प्लानिंग थोड़ी सी। तीसरा, पिकनिक प्लेट, पिकनिक बास्केट, पिकनिक हैम्पर, पिकनिक की बड़ी बास्केट होती है ना, पिकनिक टेबल, सारी चीजें रेडी चाहिए। फिर टेंट, कारपेट, कटिंग बोर्ड, फ्रूट बास्केट, और क्या क्या करते हैं, गेम्स, ईटेबल्स, खाने की सारी सामग्री, और म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक चाहिए, बिना म्यूजिक के मजा नहीं है पिकनिक में। म्यूजिक, गेम्स, फिर गेम्स, कौन कौन से गेम्स खेलने हैं उसकी भी लिस्ट चाहिए, और गायक भी चाहिए, और वो सब खाने में सब आ गया। गाइड भी चाहिए, गाइड तो एक्सकर्शन में चाहिए, पिकनिक तो जगह पता होती है, पिकनिक पार्क, और खेल, गेम्स की लिस्ट, और एंटरटेनमेंट, और डांसिंग, और सिंगिंग, और संगीत, बोल दिया। और क्या चाहिए माताजी पिकनिक में? कितने बजे जाएंगे? कितने बजे जाना है और कितने बजे आना है? टाइम, पिकनिक कब मनाई जाती है? यूजुअली मॉर्निंग्स, मिड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, संडेज, या तो शाम को, और त्योहार के सीजन में, या कोई विशेष सीजन में, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बर्थडे, और कोई सेलिब्रेशन करने के लिए। और वहाँ क्या क्या किया जाता है? सामान को इकट्ठा करना। हाँ, हर एक को ड्यूटी मिलनी चाहिए, ये सामान की देखभाल करने वाला, वहाँ पर फिर सर्व करने वाला, सारा भोजन का सारा जिम्मा एक का, ट्रांसपोर्ट, कैसे जाना है, कैसे जाना है और आना कैसे है, ये भी जरूरी है। और वहां पर कुक आउट जिसको कहते हैं, खाना लेकर जाना है या वहां जाकर बनाना है। अच्छा, वहां बनाना है, वहां अलाउड है या नहीं अलाउड है, ये भी है। माउंट में अगर कहीं जाते हैं तो बहुत सारे प्रतिबंध है, ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी जाकर आग जलाओ, कहीं कहीं परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए, वैसे नहीं जाया जा सकता है। नहीं, कभी कभी ट्रैवल्स टैंक में जाएंगे तो परमिशन चाहिए। तुम्हें किसके साथ पिकनिक मनानी है? हम जींस की परिभाषा, समान और फॉलो करने वाले, अर्थात हम जींस इक्वल्स, ये प्रभु फल की पिकनिक है। फर्स्ट पॉइंट, ये ब्रह्मा बाप और हम जींस की पिकनिक या पार्टी है। थर्ड पॉइंट, इस पिकनिक में हरेक के मुख से, होठों से कौन सा शब्द निकल रहा है? आज की मुरली से बताओ। बाबा, हरेक के मुख से एक ही शब्द है। इस पिकनिक में कुछ कुछ स्टोरीज और कुछ कुछ बातें बाबा तक पहुंच रही है। कौन सी? चापलूसी नहीं, चतुराई बोलो। चतुराई और सच्चाई, चतुराई और सफाई, क्लेवरनेस और क्लीनलीनेस की स्टोरीज, चाहे तुम चाहो या न चाहो, हरेक के जीवन की क्लेवरनेस और क्लीनलीनेस की स्टोरीज बाबा तक पहुंचती है, चाहे तुम चाहो या न चाहो, उससे कुछ भी नहीं छिपा सकोगे। He that planted the eye shall he not see? He that planted the ear shall he not hear? जिसने कान दिया है वही नहीं सुनेगा? वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है। तुम्हारे जीवन की चतुराई की बातें और सफाई की बातें, कहां कहां सत्य को छिपाते हो, दबाते हो, परिवर्तन करते हो, मॉडिफाई करते हो, रूपांतरण करते हो, और किस तरीके से उसे प्रस्तुत करते हो, वो कुछ भी नहीं छिप सकता। चाहे कितना भी छिपाओ, जितना भी जो मर्जी है करो, परंतु बाप से कुछ नहीं छिपा सकोगे। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है। दुनिया से छुपा सकोगे, दुनिया को छल सकते हो, शायद खुद को भी धोखा दे दो, परंतु बाप को कैसे धोखा दोगे? क्या उसको भी धोखा दिया जा सकता है? उसने पूछा है प्रश्न, अमृत वेले का महत्व जानो और अनुभव करो वरदानों का। यदि हम कहे कि हम महत्व भी जानते और अनुभव भी कर रहे हैं, तो वो मानेगा? टीचर से मुलाकात, अनुभव करो, महत्व जानो समय का, संकल्प का, श्वास का, सेवा का, महत्व जानो और अनुभव करो। जगदीश भाई सुनाते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर इंद्रप्रस्थ में आए थे, उन्हीं के कमरे के बाजू में जस्टिस अय्यर थे। जस्टिस अय्यर को कॉन्शियंस कीपर ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। आज जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें तो आज की तारीख में थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, ज्यादा ही गड़बड़ चल रही है। उनका उदाहरण दिया जाता है, 70 से लेके तो 100 किताबें उन्होंने लिखी है लॉ के संबंध में। इतना बुद्धिमान व्यक्ति पद्मश्री, इतना बुद्धिमान व्यक्ति 100 साल जिए, 1914 से 2014 तक, अभी भी शरीर छोड़ा है। वो यहां आए थे कॉन्फ्रेंस में। उनका नियम था कितने बजे उठने का? सुबह 2 बजे उठने का, और 2 बजे उठ के क्या करते थे? किताबें लिखते थे। कल्चरल प्रोग्राम के लिए उनको कहा गया चलो, वो कहते थे माफ कर दो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे 9 बजे सोना होता है, इसके लिए मैं आपके कल्चरल प्रोग्राम में नहीं आ सकता। एक संसार का व्यक्ति संसार के कार्य कर रहा है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए लीगल सिस्टम में, सब जगह दलितों के लिए बहुत कार्य किए, बड़े बड़े काम किए सिस्टम में। वो व्यक्ति अपनी धारणाओं पर इतना मजबूत है और हम क्या कहते हैं, हम लेट सोए इसलिए उठ नहीं पाए, हमारी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए अमृत वेला नींद कर रहे हैं। एक संसार का व्यक्ति इतना पक्का है अपनी धारणाओं में, क्या हम भी हैं? तो हम पिकनिक पर थे। पिकनिक कहां करनी है, कहां करेंगे? ब्राह्मण जीवन में पिकनिक कहां कहां करेंगे? 7 जगह बताओ। सूक्ष्म वतन में, अमृत वेले कई बार मुरलियों में आया है, सूक्ष्म वतन में आ जाओ और बाप दादा के साथ पिकनिक मनाओ। वन क्रीड़ा, पिकनिक को क्या कहते हैं, वन क्रीड़ा, वन विहार, क्रीड़ा। एक तो सूक्ष्म वतन में पिकनिक, दूसरी पिकनिक परम धाम में पिकनिक, तीसरी पिकनिक मधुबन वरदान भूमि में पिकनिक, चौथी पिकनिक सतयुग में चले जाओ। कैसे जाओगे सतयुग में प्रभाकर भाई? मन बुद्धि के पुष्पक विमान में बैठ के सतयुग में, चौथी पिकनिक। पांचवी पिकनिक का स्थान, पिकनिक प्लेस, पिकनिक एरियाज कहा जाता है उन्हें। पांचवी पिकनिक ये ना पिकनिक में कहा जाएंगे, बाबा के भिन्न भिन्न सेवा केंद्र, बाबा के भिन्न भिन्न सेवा केंद्र पर चले जाओ। कहाँ कहाँ जाएंगे माता जी पिकनिक के लिए? अच्छा पहले इधर आ जाओगे। और भिन्न भिन्न स्थान सब आ गया उसमें, सेवा केंद्र। और कहाँ जाओगे पिकनिक के लिए? प्राकृतिक, प्रकृति के पास, वहां भी जा सकते हैं। हम बात कर रहे योग में पिकनिक के लिए कहाँ कहाँ जाए? सागर के कंठे में, पहाड़ी के ऊपर, सीनिक ब्यूटीज, और वहां बैठकर आत्माओं को सकाश देना। ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ, वहां बैठो और संसार की सभी आत्माओं को इमर्ज करो। सागर के कंठे पर, नदी के पास, झरने के पास, वो एक दूसरी कैटेगरी। और कहां जाएंगे पिकनिक के लिए? भक्त, भक्तों को बहलाने के लिए, नहीं तो उनको साक्षात्कार कौन कराएगा? हनुमान का भक्त बेचारा कब से प्यासा है हनुमान के दर्शन के लिए, कौन उसको साक्षात्कार कराएगा? हमें ही करना पड़ेगा ये काम। तो भक्तों के पास, योगियों के पास, प्यासी आत्माओं के पास, जो पुकार रहे हैं उन आत्माओं के पास, जो धर्म सत्ता में जितनी आत्माएं हैं उस सभी आत्माओं के पास पिकनिक। और कहां जाएंगे पिकनिक में? हॉस्पिटल में पिकनिक अच्छा उनको पिकनिक करवाने, ठीक है तो कितने स्थान हो गए? 6, 7वां। छठवां कौन सा था? दुखी अशांत आत्माएं। 5वां था भक्त आत्माएं, जो आत्माएं प्यासी है प्रभु दर्शन की, भक्ति कर रही है, सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, तपस्या में लीन है, उन आत्माओं के पास। और 7वां स्थान कहाँ जाएंगे? वो हॉस्पिटल और दुखी अशांत में आ जाएगा। और कोई दूसरा स्थान बताओ, ग्लोब पर जा सकते हैं, संपूर्ण ग्लोब के इर्द गिर्द घूमना है, देखना है, एक नजर दौड़ानी है कि ये आत्माएं हैं, किसको क्या चाहिए। पांच खंड और पांच महासागर, यूरोप के ऊपर चले जाओ और यूरोप की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश, अमेरिका की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश, अफ्रीका की एक सारी आत्माओं को एक साथ सकाश, एशिया की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश, ऑस्ट्रेलिया की सारी आत्माएं एक साथ सकाश। तो जब ऑस्ट्रेलिया वाले मिलेंगे तो कहेंगे हमने आपको देखा है। जब यूरोप वाले मिलेंगे, आप आए थे क्या उधर, पूछेंगे, कमलेश लाइब्रेरी में आके आपको पूछेंगे आपको कहीं देखा है, आप कहेंगे मैं गया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। अरे नहीं, आप आए थे। तो पांच खंड, पांच महासागर, हिंद महासागर के ऊपर चले जाओ, उसको सकाश दो। एकोमोडेशन मिल दे देंगे, बाकी उनसे बात कर लेना एक बार। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ऊपर का आर्टिक महासागर, नीचे का दक्षिण महासागर, पांचों ही सागर को सकाश दो, पानी को सकाश दो। इस पानी पर चलो, पानी पर चलने की प्रैक्टिस है ना, पानी पर ऊपर चलने की प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे 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 यहां जाओ और पानी को पवित्रता की किरणें दो, पानी शुद्ध होगा। तो ये सारे स्थानों पर जाकर क्या करना है, पिकनिक। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, दोनों ही घर का श्रृंगार है। बाबा ने ओम शांति भवन को याद किया, मुरली वहां चल रही है। अब यज्ञ के जो अलग अलग स्थान है वहां पर भी जा सकते हैं। शांतिवन वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो बताई उस दिन, यज्ञ का वृक्ष। कहीं पर भी अलग अलग स्थानों पर जाओ, आत्माओं को इमर्ज सकाश। छह इधर, सात नीचे, और एक सूरज चांद सितारे प्रकृति। तो सबसे पहला फल ये थी पिकनिक। अच्छा, पिकनिक में और क्या खाने के लिए क्या ले जाओगे? फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट सलाद, फ्रूट प्लेट खाने के लिए लेके जाओगे। कब जाओगे, टाइम? अमृत वेला जाओ, नुमा शाम जाओ, बीच बीच में भी जाओ। कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट? बुद्धि रूपी विमान, पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल, कितना रिफाइंड? डबल रिफाइंड। और वहां जाके बाद गेम्स, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, डांस, ड्रेस। ड्रेस थोड़ा कलरफुल पहना जाता है पिकनिक के दिन, थोड़ा टोपी टोपी वगैरह, वो भी थोड़ी उल्टी। क्या क्या? अच्छा, सेल्फी स्टिक देखने के लिए। और अच्छा अच्छा जो कूड़ा करकट है उसको भी एनवायरमेंटल, उस दिन कहा ना बचत स्कीम जो बनाई थी हमने, द स्वीट टीम, स्वीट टीम में एक ई कौन सा आता है, एनवायरमेंट। वहां जाकर गंदगी फैला के नहीं आना है, और सारा देख लेना सब कुछ ठीक ठाक तो है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। और यदि कोई अनुभवी व्यक्ति है उसको लेकर जाना पिकनिक में। जैसे एक व्यक्ति पहली बार विमान की यात्रा कर रहा होता है एरोप्लेन में, और वहां बैठता है तो एयर होस्टेस आती है, उसको पूछता, तेल विल सब ठीक तो है ना गाड़ी में, फ्लाइट में, मतलब सब पेट्रोल तेल सब डला हुआ है ना, मतलब इंजन और वो सारा। तो वो कहती है, आप शांति से बैठे रहो, वो सब हम संभाल लेंगे। तो वो कहता है, हम तो संभाल लेंगे, फिर बाद में बीच में रोक के मत बोलना, आप धक्का लगाओ। वो एक गांव वाला व्यक्ति जाता है ना, फ्लाइट में तो वो बेल्ट बांधना होता उसको समझ नहीं आता, वो सीधा ऐसी जबरदस्त गार्ड बांध देता है। तो सारी तैयारी चाहिए और पिकनिक की प्लानिंग चाहिए, करना क्या है जाके वहां पर, गेम्स की लिस्ट चाहिए, यदि हमको कराना है गेम्स, कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते पिकनिक के, बड़ी पिकनिक यदि होती है फैमिली पिकनिक कॉलेज पिकनिक, उसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो डिसाइड करते ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, बिना प्लानिंग के टाइम टेबल के नहीं जाना होता है। तो हमारा भी सूक्ष्म वतन का टाइम टेबल, परम धाम का टाइम टेबल, सतयुग में क्या करना है, क्या अनुभव वहां करना है, टीचर्स को कहा अनुभव करो फिर दूसरों को कराओ, जानो फिर दूसरों को बतलाओ, अमृत वेले का महत्व क्या है, आंख खुली और क्या बाप समान स्थिति में स्थित हो जाओ। कब स्थित हो जाओ? बाबा के कमरे में आने के बाद नहीं, स्नान वगैरह करने के बाद नहीं, कब? आंख खुली और पहला संकल्प ये नहीं, अरे लेट 15 मिनट लेट हो गया आज, आंख खुली किसका मैसेज आया है? कुछ नहीं, मैसेज आया ही नहीं अभी तक, रात में पोस्ट किया था, अभी तो कुछ नहीं आया। रात में 10 फोटो पोस्ट किए थे, अभी तक कुछ भी नहीं आया। आंख खुली और बाप समान स्थिति में स्थित हो जाओ, कितना अच्छी प्रैक्टिस है। उठते ही फर्स्ट संकल्प, उसके लिए सोते समय भी वही संकल्प चाहिए, फिर तो ही पहला संकल्प होगा। वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की आवश्यकता है, बाबा ने कहा यहाँ पर, क्वालिटी वाले भी हैं क्वांटिटी वाले भी हैं। सबके मुख से एक ही आवाज निकल रहा है, ये पिकनिक ये पार्टी ब्रह्मा बाप की और हम जींस की है, ये प्रभु फल की पिकनिक है, तो पिकनिक मनाओ। योग जो है वो एंटरटेनमेंट हो जाए, एक अभ्यास नहीं कि हम कर रहे हैं, एक खेलकूद जैसा मौज, एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल, ऐसी पिकनिक हो जैसे वो होता है ना एलिस में, अन बर्थडे पार्टी करनी है, एक होती है बर्थडे पार्टी, एक होती है अन बर्थडे पार्टी, जो मैड हैटर और मार्च हेयर दोनों मना रहे होते हैं। जब छोटी सी एलिस वहां पहुंचती है वो कहती है हैप्पी बर्थडे, वो कहती है हैप्पी बर्थडे नहीं हमारा आज अन बर्थडे है, वो कहती है अन बर्थडे, ये अन बर्थडे क्या होता है, साल में 365 डेज होते हैं उसमें एक ही दिन बर्थडे होता है, बाकी 364 डेज हम लोग अन बर्थडे पार्टी मनाते हैं। तो वो कहती क्या मेरा भी अन बर्थडे है, वो कहते हैं हाँ तुम्हारा भी अन बर्थडे है, और संगम युग पर बर्थडे ही बर्थडे है, हर दिन पार्टी, हर दिन सेलिब्रेशन, हर दिन उत्सव, हर दिन उमंग, हर दिन उत्साह। तो अभी चलते हैं फल की तरफ। पहला फल किसको दिया था सुबह? पहला फल नदारद, पहला फल है प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट इनविजिबल फ्रूट। किसको मिलता है ये फल, कौन बताएगा? मुरली से बताओ। जो श्रेष्ठ, जिनको सर्व प्राप्ति हुई है, श्रेष्ठ प्राप्ति के जो अधिकारी है, और किसको बताया ना, सेवा, श्रेष्ठ सेवा जो कर रहे हैं, उनको ये प्रत्यक्ष फल मिलता है। वैसे नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष फल कौन कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख से भी पहले खुशी, सेवा की और खुशी मिली, किसी को ज्ञान समझाया और खुशी मिली, अभी अभी कोई सेवा की स्थूल और तुरंत खुशी मिलती है, किसी को सुख दिया और खुशी मिली, तो पहला प्रत्यक्ष फल कौन सा है? खुशी। फिर है अतीन्द्रिय सुख, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त हो। सारा संसार इंद्रिय सुखों के पीछे पागल है, और हमें जो मिला है वो प्राइसलेस है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि वो अति इंद्रिय है, सुपर नेचुरल, सुपर सेंशियस, सुपरनल, अनअर्थली, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। वो इस संसार का नहीं है, इस जगत का नहीं है, न्यारा है, निराला है। ऐसा सुख जिसकी संसार के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई सुख होता है क्या। वो तो अपने छोटे छोटे सुखों को ही सब मानते हैं, परंतु एक सुख ऐसा भी है जहां पर इंद्रियां नीचे रह जाती है और आत्मा उस सुख में तैरने लगती है, और वास्तव में वही लक्ष्य है जीवन का। तो दूसरा प्रत्यक्ष फल कौन सा है? अतिंद्रिय सुख। तीसरा संतुष्टता, तृप्ति। आत्मा जो भी कर्म करती है तृप्त ही रहती है संसार में, पर यहां प्रत्यक्ष फल तुरंत तृप्ति। चौथा संतुष्ट प्रत्यक्ष फल हल्कापन, जो भारीपन था, एक तनाव, एकदम से किसी ने जैसे एब्जॉर्ब कर लिया, वो एक मशीन होती है ना जो कचरे को एब्जॉर्ब करती है, क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर। जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर बनकर आ गया और खींच लिया, वो तुरंत हल्कापन। इसके लिए सेवा का बहुत महत्व है यहाँ पर, स्थूल सेवा। किचन में जाओ, टाइम है, कुछ सेवा करो, जहां जहां सेवा की आवश्यकता है वहां वहां पहुंच जाओ। कोई आया है समझाने वाले कोई नहीं है, पहुंच जाओ और उनको समझाने चालू करो। दुआएं देकर जाएगी आत्माएं, भूलेंगी नहीं, बाकी सारे बड़े बड़े भाषण भूल जाएगी, पर तुमने जिनको समझाया, जिसने उसको उनको समझाया था, तुमको नहीं भूलेगी। बीज डाल रहे हो, बीज जब उगेगा तब उगेगा, जब अंकुरित होगा तब होगा। और कौन सा प्रत्यक्ष फल है? इधर उमंग उत्साह। जितना उमंग उत्साह है वो और बढ़ जाएगा। और प्रत्यक्ष फल कौन सा है? कहा गया इसमें, हाँ ये है। नहीं नहीं, अभी तो 10 फल है, पहला ही चालू है अभी। प्रत्यक्ष फल इंस्टेंट आनंद, निश्चिंत, इंस्टेंट, जो तुरंत मिलता है। इंस्टेंट सेवा की और तुरंत क्या महसूस होता है? दुआएं, खुशी तो पहले बोल दिया, दुआएं, तुरंत दुआएं मिलती है, आत्माओं की दुआएं, स्वयं की दुआएं, परमात्मा दुआएं। और प्रत्यक्ष फल संतुष्टता बोल दिया, प्रेम और सहयोग और बंधन मुक्त, सम्मान और एनर्जी। भले थके हुए थे, ठीक है, और किसी की सेवा कर दी, ऐसा महसूस होगा थकान मिट गई। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। कब उतरती है? जब किसी दूसरे व्यक्ति के चरण को धोकर पी लेने से, कविता है, तब मेरी थकान अपने आप मिट जाती है। थका तो मैं था, पर दूसरा जो थका था उसकी सेवा की और मेरी थकान मिट गई, नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ गई, झील एंथुसियाज्म, उमंग उत्साह आ गया। तो यह है पहला फल, प्रत्यक्ष फल। दूसरा फल कौन सा है? प्रभु फल। दूसरा फल प्रभु फल। शायद ही किसी मुरली में ऐसा शब्द बाबा ने प्रयोग किया है, प्रभु फल, गॉड्स फ्रूट या गॉडली फ्रूट। गॉडली फ्रूट से गॉड्स फ्रूट ज्यादा अच्छा शब्द है। कौन कौन से प्रभु फल हमें मिले हैं? संगम युग ही प्रभु फल है। अच्छा, स्वयं प्रभु ही फल है। किसका? हमारी भक्ति का। उसका मिलना ही फल है, उसको पा लेना ही फल है, उससे जो मिलन हो गया यही सबसे बड़ा फल, प्रभु फल है। ये ब्राह्मण जीवन ही प्रभु फल है, ये ब्राह्मण परिवार ही प्रभु फल है, ये ब्राह्मणों का संगठन ही प्रभु फल है, ये यज्ञ ही प्रभु फल है, मुरली भी प्रभु फल है, मुरली भी प्रभु फल है, सारी प्राप्तियां प्रभु फल है। तो एक लिस्ट अपने आप को बनानी है कि हमें बाबा से कौन कौन से प्रभु फल अर्थात प्रभु प्रदत्त प्रभु से प्राप्त हुए फल अर्थात प्रभु से प्राप्त हुए खजाने प्राप्तियां कौन कौन सी है, इसका निरंतर चिंतन करते रहना है, तो ही स्थिति ऊपर रहेगी, नहीं तो संसार में दुखों की कमी नहीं है। तीसरा फल कौन बताएगा? अविनाशी फल। बाबा से हमें कौन सी ऐसी चीजें मिली है जो कि अविनाशी है? एक तो ज्ञान का अविनाशी फल, दूसरा ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता, इसलिए ज्ञान को लेते रहो पता नहीं किस समय काम में आ जाए। इसके लिए जब परिस्थितियां नहीं है जीवन में, वो टाइम है ज्ञान को अंदर ही अंदर धारण करते जाओ, पता नहीं कौन सी परिस्थिति कब आने वाली है, फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस परिस्थिति में पता नहीं कौन सा पॉइंट याद आ जाए, किसके मुख से सुना हुआ पॉइंट याद आ जाए, क्योंकि हमें भी पता नहीं जो हम सुन रहे, इसके लिए अंदर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ज्ञान को भरते जाओ, क्योंकि डिलीट कैसे, डिलीट करना तो योग में होता है, परंतु भरना हमारे हाथ में है, ज्ञान के नए संस्कार क्रिएट करने हैं, तो भरते जाना सुनते जाना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा मम कथा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। मानस में नवदा भक्ति में पहली दो भक्तियां ये है, प्रथम भक्ति का संतन कर संगा। शबरी को श्री राम बताते हैं, हे शबरी सुन, मैं तुम्हें ये नवदा भक्ति सुनाता हूँ। पहली भक्ति ही है संतों का संग कर, महान आत्माओं के संग में जाओ सत्संग। कितना भी डिप्रेस्ड मूड हो, ग्रुप में चले जाओ और जहां मुरली की चर्चा हो रही है, अपने आप उमंग उत्साह जाएगा और डिप्रेशन भाग जाएगा। कितने भी डाउन हो मूड, कहां चले जाओ, श्रेष्ठ जगह चले जाओ, महान आत्माओं के संग। और जब जब महान आत्माओं का संग मिलने लगे, समझ लो प्रभु कृपा हो रही है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, परमात्मा कृपा हो रही है इसलिए महान आत्माओं का संग। तो ये कैसे पता चले कि भगवान की कृपा मेरे पर है, क्योंकि महान आत्माओं के आगे संग में है ना सभी, तो ये अर्थात परमात्मा कृपा हो रही है, ये उसका सिम्टम निशानी है। दूसरी मम कथा प्रसंग, दूसरी प्रकार की भक्ति है मेरी कथा सुनना अर्थात ज्ञान सुनना, ये अविनाशी फल है। तो सबसे पहला अविनाशी फल कौन सा है? ज्ञान। इसके लिए ज्ञान को क्या करते रहो, पंप करते रहो अपने सिस्टम में, पंप करते रहो ज्ञान। वो एक कार्टून किसी ने भेजा था ना, जैसे वो पेट्रोल पंप में ब्रेन में पंप रखा है और उसमें लिखा है ज्ञान, वो पेट्रोल पंप वाला ज्ञान भर रहा है उसके दिमाग में और वो ऐसा निढाल पड़ा हुआ है और उसमें पावर आ जाती है जैसे जैसे ज्ञान का पेट्रोल अंदर जाता है। और दूसरी अविनाशी चीज जो हमको मिली है, ज्ञान आ गया हो, वो ज्ञान आ गया, गुण, गुण अविनाशी है, संस्कार अविनाशी हमें भरने हैं, शक्ति अविनाशी जो हमें अंदर भरने हैं, खजाने अविनाशी, प्राप्ति अविनाशी, भाग्य अविनाशी, खंडित वाला भाग्य नहीं, पवित्रता अविनाशी, ब्रह्मचर्य अविनाशी, धारणाएं अविनाशी, सेवा की प्रालब्ध अविनाशी। इस पर चिंतन करना है कि हमें सब कुछ अविनाशी मिला है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई भी किडनैप नहीं कर सकता है। अगर कोई ले ले तो क्या हो जाएगा? वो सुदामा निकलता है ना कृष्ण से मिलने जाने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है अरे तुम कुछ तो लेके जाओ, अकेले जाओगे तो कोई तुमको कोई चुरा लेगा लूट लेगा। वो कहते मेरे पास कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यदि कोई ये भी लूट ले तो वो खुद वो भी भक्त हो जाएगा, वो भी मालामाल हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं। इसके लिए ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ये खुशी भी अविनाशी है। मिली है खुशी हमको प्रभु के मिलन की, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। चौथी आपका ही था सर्वशक्तिया, सर्वगुण और सर्व संबंधों के स्नेह का रस, एक से सारे रस। दुनिया के रस देख लिए ना, क्या करते है? कोई कितना भी प्यार करता हो, कभी ना कभी तो दुख देता ही है, कभी ना कभी अविश्वास दिखाता है, कभी ना कभी धोखा जरूर देता है, कभी ना कभी कड़वे वचन तो बोलता ही है, कभी ना कभी हर्ट करता है, कभी ना कभी कटाक्ष करता है, व्यंगवान करता है, कमेंट्स करता है, टॉन्ट करता है, कभी ना कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता है। अगर कुछ ना करे तो कुछ तो करता ही है जो हमें दुख दे, चाहे उसकी वजह से नहीं पर हम तो दुखी हो ही रहे। और ये कैसा है? सर्व संबंधों का रस उसमें है, सर्व शक्तियों वाला ये फल है, सारे विटामिन है इसमें, सारे न्यूट्रिएंट्स है इसमें। फल खाना चाहिए, डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना फल खाओ, सब चीजों के लिए आवश्यक है। पांचवा फल किसका था? पांचवा किसका था? नहीं नहीं, किसका था? सुबह किसको थी? अच्छा, कहाँ गया? ईश्वरीय जादू का फल, गॉड्स फ्रूट, फ्रूट ऑफ गॉड्स मैजिक। क्या उसने हमारे जीवन में कौन कौन सी जादू की है, उसको उसका चिंतन करना है। यदि वो कहता है मैं जादूगर हूँ, क्या वास्तव में उसने कोई जादू की है हमारे जीवन में? कौन सी जादू की है, कैसी जादू की है, पहले क्या थे और क्या बन गए, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, कैसे था सब कुछ, क्या सोच थी, क्या वृत्ति थी, क्या दृष्टि थी, और उसने आकर ये सब कुछ बदल दिया। इस बारे में चिंतन करना है, केवल ये नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, हाँ हो गया नहीं, ये था अब ये हुआ, ये था अब ये हुआ, पहले ऐसा था ये हुआ। कॉन्ट्रास्ट अपने ही जीवन का बार बार करते रहना है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो इस जीवन से उस जीवन में वापस जाने की संभावना रहती है। कभी कभी इधर से उधर थोड़े सा चक्कर लगा के आते हैं, ट्रिप इधर से थोड़ी छुट्टी मिल गई कि हॉलीडेज में पास्ट में जाते हैं, पास्ट की दृष्टि, पास्ट की वृत्ति पास्ट में। इसलिए क्या करना है, ईश्वरीय जादू का जो फल है, जादू कर दिया है उसने, कौन सा जादू किया है, संकल्प भी बदल दिए, दृष्टि वृत्ति जो 21 बातें जो सारी आ जाएगी उसमें, स्वप्न बदल दिए, स्वप्न क्या आते थे, अब कौन से स्वप्न आते हैं, कल्पना क्या थी, फैंटेसीज क्या थी, इमेजिनेशन फैंसी क्या थी, अब कौन से कल्पना है, अब कौन सी फैंसीज है, सब कुछ परिवर्तन। दृष्टि वृत्ति स्मृति दृष्टिकोण स्वप्न आदतें संस्कार स्वभाव संबंध संपर्क चलन सब कुछ। छठवा किसका था?
अविनाशी प्राप्ति
का, अविनाशी अविनाशी प्राप्ति का फल। अविनाशी फल है तो प्राप्ति भी अविनाशी है, अटेंडमेंट्स भी अविनाशी है। कौन कौन से जो प्राप्ति हुई है इस जीवन में वो सभी अविनाशी है, या होने वाली है वो भी सारी अविनाशी होगी, इसका भी बार बार चिंतन करना है। एट्थ, एट्थ में क्या है? ये सेवेंथ हो गया। एट्थ तंदुरुस्ती, अच्छा सिक्स तो बाकी है, संकल्प सिद्धि का फल। सिक्स है संकल्प सिद्धि का फल, जो संकल्प किया वो हो जाना, ये संकल्प सिद्धि है। और वो होगा जब संकल्प इतना शक्तिशाली पावरफुल होगा तो, जब उसमें प्यूरिटी की प्रकंपन होंगे तो। नहीं तो लोग तो चाहते हैं संकल्प, ब्राह्मण बहुत सारे अच्छे अच्छे करते परंतु वो पूर्ण नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि शायद प्यूरिटी में कमी है, शायद वो जो संकल्प है उसमें निस्वार्थ भावना की कमी है, शायद उसमें कहीं ना कहीं कामनाएं है, हद है, इसलिए पूर्ण नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि संकल्प करो और वो पूर्ण नहीं होगा। जितना संकल्प शुद्ध होगा, निस्वार्थ होगा, बेहद का होगा, उसके पूर्ण होने की कामना संभावना उतनी अधिक है, क्योंकि हमारे हद के संस्कार संभव है। ये ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया था, मैं बचपन से ज्ञान में हूं और पति ज्ञान में नहीं चलता। मैं बचपन से ज्ञान में हूं। अब बताओ क्या करना है उसको लाने के लिए। यही यही फर्स्ट टू लाइन से इतने क्रांतिकारी थे। अब तो सोचना ही पड़ेगा क्या उत्तर दिया जाए। तो संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे क्योंकि हद है, कामनाएं है, इम्प्यूरिटी है, मोह है। जो मोह, जो संकल्प जितना निर्मोही संकल्प है, मोह रहित संकल्प, उतना वो सिद्ध होगा। ये ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो ये क्यों नहीं सोचते बाकी का भी हो जाए? अपने घर वालों का क्यों सोचते हो खाली? पड़ोसी का कल्याण हो जाए, ये क्यों नहीं सोचा किसी ने कि वो पड़ोसी, वो जो भिखारी वहां बैठा दिखता है रोज, वो ज्ञान में आ जाए? ये कोई नहीं सोचता है। आठवां, तंदुरुस्ती। फ्रूट्स खाने को कहते हैं ना, फ्रूट्स खाना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, सबसे अच्छा टाइम है एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाने का। पर लोग थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, भोजन के टाइम पे खाते, भोजन के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, भोजन के बाद भी नहीं, तुरंत बाद नहीं, एटलीस्ट 1 आवर या लाइट फूड के बाद। कई लोग मोनो डाइट करते, मोनो डाइट अर्थात एक ही प्रकार का फल, एक ही प्रकार का डाइट, और वेट रिडक्शन में सबसे बेस्ट है फ्रूट डाइट। सारे कुछ मिलता है उसमें, स्किन और ये एक्नी और कितने सारे बाल, बहुत सारी, वो एक दूसरा टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट से लेके सब कुछ उसमें है। और एक योगी के लिए सर्वोत्तम आहार है फलाहार, अल्पाहार, उसमें जितनी एनर्जी है बाकी, और जैसे जैसे व्यक्ति इसमें जाता है फ्रूट्स पर, फिर उसको बाकी थोड़ा कम पसंद आने लगता है। अगला फल है दुख, अशांति और विघ्न, इन सब से दूर रखने वाला ऐसा अमर फल। दुख, अशांति और सर्व विघ्न, इनसे दूर। यदि जीवन में अशांति है, दुख है और विघ्न आ रहे, अर्थात ये फल हमने नहीं खाया, पहले स्वीकार करो नहीं खाया, तो ही मार्ग खुलेगा। आप कैसे खाए? पहले स्वीकार करो कि कुछ नहीं पाया है, भगवान पाने के बाद भी अंतर्मन नहीं स्वीकार कर पाता। वो कहता है हमने सब पाया, हम सब जानते हैं, अगर सब पाया है तो ये दुख क्यों जीवन में, क्यों अशांति? पा तो लिया ना, फिर अशांति क्यों, फिर क्यों विघ्न बार बार, और विघ्नों के वश हो जाते और ज्ञान योग छूट जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो शायद अब तक नहीं पाया है, फल को खाया ही नहीं है। लास्ट फल, बाप का बनना ही ये फल है, श्रेष्ठ फल है। किसको मिलता है ये फल? जो जो बाप का बनेगा उसको मिला। और यदि हम बाप के बने और फिर भी दुखी और अशांत है और तंदुरुस्त नहीं है, अर्थात हम बने ही नहीं है, ये तो कोई मानेगा ही नहीं। सब कहते हैं कि हम तो बने हैं, परंतु बनना अर्थात क्या? व्हाइट ड्रेस पहनना और बैच लगा लेना, मधुबन में आ जाना, बाबा से मिल लेना, सेंटर पर मुरली क्लास में जाना, अमृत वेला करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ब्रह्मा भोजन खाना, बाहर का भोजन छोड़ देना, नुमा शाम का योग करना, क्या ये बनना है? कि बनने की परिभाषा भी और कुछ है? बनना अर्थात सब कुछ उसका, बनना अर्थात सब कुछ उसमें। तो ये 10 फल। उसके बाद में सफलता के 5 सूत्र बताए हैं मुरली में, कौन कौन से आप बताओ? सफलता के 5 सूत्र, सेवा में सफलता के लिए 5 सूत्र अव्यक्त महावाक्य बाबा के उसमें है। एक वो है, एक बता दिया, थर्ड नंबर। पहला है समर्पण, पहला है समर्पण, दूसरा है बेफिक्र जीवन, तीसरा है एक बल एक भरोसा, चौथा है दृढ़ता। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है। और पांचवा है हर खजाने को सफल करना, उसमें फिर 6 बातें अलग है। तो सबसे पहला है समर्पण भाव। जितना व्यक्ति सेवाओं में समर्पित रहता है मन से, उतनी ही उसमें सफलता होगी। समर्पण भाव अर्थात ये सारे खजानों का दान करते हुए ये ना हो कि ये मेरे हैं, हम दे रहे हैं, नल है, टंकी ऊपर है, पानी इस नल से बह रहा है, महिमा नल की नहीं है, उसकी है, टंकी की। नल ये सोचने लगे कि मैं कर रहा हूं तो कैसा होगा?
नल ना हो तो फिर क्या होगा?
पर नल ये अहंकार कर ले कि मैं तो, जैसे आज मकर संक्रांति है ना, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, प्रश्न पूछा गया पतंग कौन उड़ा रहा है, लड़का कहता है मैं उड़ा रहा हूं, हवा कहती है मैं उड़ा रही हूं, धागा कहता है मैं उड़ा रहा हूं, पतंग का एक कोना कहता है मैं उड़ा रहा हूं। भगवान की आवाज आती है हम सब उड़ा रहे हैं, लेट अस ऑल गेट एनलाइटेंड। पतंग ना तो धागा उड़ा रहा है, पतंग ना तो पतंग का कोना उड़ा रहा है, ना न तो लड़का उड़ा रहा है, ना तो हवा, पतंग हम सब उड़ा रहे हैं। ये परमात्मा की आवाज आती है वहां पर। तो ये समझना, ये सबसे अच्छा उत्तर है। चलो नल की भी महिमा और उसकी भी महिमा। परंतु नल को भूलना मत कि मैं नल हूँ। नल भव ज्ञान नल भव,
मैं ईश्वर का नल
हूँ, गॉड्स नल, गॉड्स टैप, गॉडली टैप, टैप द गॉडली टैप। पहला है समर्पण, दूसरा है बेफिक्र जीवन। जिस जीवन में फिक्र ही फिक्र है वो कहां से, उसमें जो खुद ही चिंताओं में ग्रसित है वो उसको कहां से सफलता मिलेगी, निश्चिंतता हो। तीसरा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, ने एक बल एक भरोसा, एक ही बल और एक ही भरोसा, उसके आधार पर हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो करा रहा है, वो कर रहा है, ये करण करावन हार की स्मृति। और चौथा दृढ़ता, डिटर्मिनेशन चाहिए, ऐसे ही नहीं होगा थोड़ा सा कर लिया और छोड़ दिया और यहाँ तो हो नहीं रहा, यहाँ तो लोग निकलते नहीं, ये कल राठी जमीन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बार बार करते रहो, सिल पर पड़त निशान, रस्सी आवत जात है, वो रस्सी भी निशान कर देती है, छोड़ो नहीं, पत्थर पर भी निशान करती है, इसके लिए रुकना नहीं है, करते रहो। अगला है लास्ट, सारे खजाने को क्या करो, सफल करो। 6 बातें बताई है जिनको सफल करना है। पहला संकल्प, नहीं, पहला श्वास या समय, फिर श्वास, धन और फिर गुण ज्ञान शक्ति है। समय को सफल करना अर्थात क्या मिल जाएगी, फुल टाइम राज्य भाग मिल जाएगा उधर, फुल टाइम। समय यहाँ व्यर्थ नहीं गवाना, सफल करना अर्थात टू यूटिलाइज इन अ वर्थ वाइल वे, उसको सफल करना। सफल शब्द का जिस अर्थ से बाबा प्रयोग करते वैसा हिंदी साहित्य में, भाषा में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये केवल ब्राह्मणों की भाषा है, भोजन बचा हुआ इसको सफल करो। दूसरों के सामने कहेंगे ये सफल क्या होता है, सफल अर्थात सक्सेस, ये सफल करना अर्थात ये तुमने कौन सा नया शब्द इन्वेंट किया है, ये केवल इधर ही देखने को मिलता है। ये बाबा के जो शब्द है ना, जैसे सुना, ब्राह्मण एक दूसरे से बातें करते हैं ना, सुना सुना, ये जो सुना है ना ये बाबा के शब्द है, ये दादियों के शब्द है। मेहरबानी, मेहरबानी करके, ये दादियों के मुख से निकलता है बहुत बार, मेहरबानी करके, या ब्राह्मणों के मुख से। कहाँ है भाई साहब, रेस्ट पर है, ये ब्राह्मणों की भाषा है। क्या हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, ये संसार में ऐसा बीमार होने के बाद कोई नहीं बोलता है, ये इधर के शब्द, वेरी वेरी क्या कहेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक ब्राह्मणों के शब्द है ये सारे। हाँ, मुझे संकल्प आ रहा है, उधर संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, ऐसे जल लेकर संकल्प किया जाता है, वो है संकल्प। यहाँ हम लोग विचार को संकल्प करते हैं, वो संसार वाले समझेंगे इनकी भाषा ही अजीब है थोड़ी। तो ये दिस इज वेरी यूनिक डिक्शनरी है, ये ब्राह्मण की डिक्शनरी। तो पहला है समय को सफल करना अर्थात समय वेस्ट नहीं करना अर्थात आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स। व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया क्या है, नेट है, गूगल है, कौन है जो आता है और टाइम छीन कर लेके चले जाता है। कोई कंपनी है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई संबंध है, कोई दोस्त है, कोई स्थान है, कौन है, कोई किताब है, कोई दृश्य है, कोई चित्र है, कोई वीडियो है, कोई चैनल है, कोई पोस्टर है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, टाइम वेस्ट फर्स्ट। सेकंड, श्वास। श्वास को सफल करना अर्थात क्या, ये बताओ। समय का तो हो गया ना, पहला समय था। नहीं, श्वास को सफल करना अर्थात श्वास मतलब क्या, संतुष्ट जनक उत्तर नहीं है। और श्वास अर्थात श्वास को सफल करो अर्थात, तो श्वास अर्थात क्या, प्राण, श्वास अर्थात क्या, स्मृति। ये जो श्वास है इसका इस श्वास से संबंध नहीं है। समय तो हो गया ना, पहला बोल दिया समय को वेस्ट नहीं करो, ये है श्वास। इस पर चिंतन चिंतन करो थोड़ा और। हाँ, तो प्राण ना, उसका अर्थ हुआ फिर प्राण। प्राण का अर्थ क्या हुआ फिर, लाइफ फोर्स, जिगर से, दिल से, क्या वो विशेषण है, उससे क्या, उससे क्या। तो ये चिंतन का विषय है, क्योंकि कई बार बाबा ने मुरली में श्वास और समय को एक ही बताया है, कहीं कहीं श्वास और समय को अलग बताया है। तो श्वास को सफल करो तो श्वास नहीं रुकेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, धन। धन को सफल करो तो माला माल बन जाएंगे। ज्ञान को सफल करो तो समझदार हो जाएंगे। कब से, द्वापर से, फिर अभी से समझदार, सतयुग त्रेता में समझदार और द्वापर में भी समझदार। फिर किसी की जरूरत नहीं, किसी की साथी की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप ही निर्णय ले सकेंगे। नहीं तो व्यक्ति को चाहिए ना कोई, हर बात में कंसल्ट करता है, पति पत्नी से पूछता है, पत्नी पति से पूछती है, ये करे कि नहीं करे, दोनों कंसल्ट कर करके डिसीजन लेते हैं जीवन के। तो क्या करना पड़ेगा फिर सुशील भाई, किसी की भी पूछना नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, तो किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, गुण, गुण को अभी धारण कर लो, सफल करो, अर्थात गुणमूर्त सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। लास्ट हो गया धन, शक्तियां, शक्तियों को सफल करो तो सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, शक्तियां अपने आप काम करेंगे, राज्य तुम्हारा अखंड होगा। तो ये बातें थी सफल करने की, ये बातें थी सेवा में सफलता की। फिर टीचर से बाबा ने फिर से अमृत वेले की पॉइंट बोली है। यह मुझे एक बात याद आ रही है, दीदी मनमोहिनी जो जगदीश भाई ने उनके इसमें भी लिखा है कि हमेशा ही स्नान करके ही अमृत वेला करते थे और मुरली से पहले फिर एक बार स्नान करते थे,
दो बार
शाम का, वो अलग जो भी है, परंतु अमृत वेला स्नान करके ही करे तो उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है, ब्रश करके ये सारे जो है ना स्टिमुलेट हो जाना चाहिए इधर एक्सेप्शनल केसेस है, अपवाद दांत नहीं है वालों का तो अमृत वेले की बात टीचर से की, फिर पिकनिक की बात हुई, फिर उसके बाद में 10 प्रकार के फल, और भी कुछ रह गया है, अधर कुमारों से मुलाकात, 4 प्रकार की चिंता है। पहला था तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता और परिवार की चिंता। तन की 2 प्रकार की चिंता है, कौन कौन सी तन की चिंता, जीविका, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबा कहते दाल रोटी मिलेगी, बट ब्राह्मण आत्मा को दाल रोटी से संतुष्टता होती है क्या, ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। 10 दिन भी यदि थाली में खाली दाल और रोटी, उसको मीठा भी चाहिए, उसको बीच में ब्रह्मा भोजन भी चाहिए। बाबा ने गारंटी वो सारे वैरायटी की नहीं दी है, बाबा ने गारंटी दाल रोटी की दी है। इसके लिए आदत दाल रोटी की भी चाहिए, अटेंशन, ठीक है ना, बहुत बड़ा गहरा राज बोला है। अगर थाली पूरी भरी हुई देखने की आदत है और हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि कहां एडजस्ट करूं और कोई चीज है, तो फिर मुश्किल होगी, और कहीं छूट तो नहीं गया, कोई नई छूट तो नहीं गया, चेक करो, कंफर्म करो दूसरे से, म्यूजियम में जा रहे हैं तो वहां कंफर्म करते हैं ना, कोई छूट तो नहीं गया, सारा आ गया सारे आइटम्स आने चाहिए, कोई भी छूट ना जाए, पता नहीं ऐसा मौका फिर थोड़ी ना आएगा नारियल की चटनी और किसी और के थाली में कुछ दूसरी कटोरी दिख गई तो फिर बेचैनी चालू हो जाती है कि कहां से मिली होगी इसको, फिर देखते हैं कहां से मिली होगी। अगर कोई पहचान का होगा तो चिमन भाई को बोल भी देगा कि जरा अरेंज करो और चिमन भाई फटाफट तुरंत जाके पूरी प्लेट भर के, कटोरियों से भर के प्लेट तैयार तो दाल रोटी की गारंटी है, पर बाकी चीजें वो नहीं पता। एक तो चिंता व्यक्ति को भोजन की होती है, दूसरी चिंता है बीमारी, बीमार हो गई तो क्या करेंगे, कौन देखेगा, क्या होगा। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू हो रहे, किसी के बन रहे हैं और चुकतू भी हो रहे, दोनों चीजें हो रही है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यहाँ कुछ कुछ बन रहे और कुछ कुछ चुकतू हो रहे, तो यही समझना बीमारी आने के बाद अच्छा है, चुकतू होने दो। बीमारी में अचल अडोल जो रहते हैं वास्तव में वही योगी है, बड़े बड़े योगी हिल जाते हैं बीमारी में, छोटी छोटी बीमारी में बड़े बड़े योगी हिल जाते, और बड़ी बड़ी बीमारी में सच्चे योगी नहीं हिलते, ये अनुभव है। पहली चिंता शरीर की, दूसरी चिंता धन की, धन की, धन की भी चिंता नहीं, तीसरी चिंता मन की परेशानी, चौथी चिंता परिवार, ये एक बड़ा विषय है, पारिवारिक चिंता है, बहुत सारा व्यक्ति घिरा हुआ रहता है इन चिंताओं में, छूट ही नहीं पाता, ब्राह्मण बन जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, परंतु वो चिंता वैसी की वैसी रहती है। अब यहां बाबा ने क्या क्या कहा है कि तुम को बाबा ने क्या कर दिया, पहले तुम चिता पर थे, बाबा ने तुमको दिल तख्त पर बिठा दिया, पहले तुम चिता पर जल रहे थे। बाबा ने अमृत डाला है, अमर बना दिया है। पहले तुम मर रहे थे, बाबा ने जिंदा कर दिया, यहां तुम मरजीवा बने हो। पहले मुर्दे थे, क्या बना दिया भगवान ने आके, महान बना दिया। परंतु क्या ये केवल थियरी है या इसका कोई अनुभव भी? कंपैरिजन चाहिए कि ये जो जीवन था मरा हुआ जीवन था, अभी हम जिंदा हुए। वो संसार में गायन है किसका? बाबा ने कहा भगवान का। मुर्दे को जिलाता है। बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट के पास में मैरी आती है, मार्टा, दो बहनें, उनका एक भाई लाजरस दो दिन पहले मर चुका है, चार दिन पहले। उसके पास आती है और कहती है कि यदि आप होते तो वो मेरा भाई नहीं जाता। और दो दिन पहले वो आई भी थी, तब जीसस जानबूझ के नहीं जाता है। और फिर चार दिन के बाद जाते हैं, जबकि उसको दफनाया गया है, एक गुफा है जिसमें उसको रखा गया है। जीसस वहां जाता है और कहता है लाजरस कम आउट, और दिखाया है जॉन में, चैप्टर जॉन में, जॉन के चैप्टर में, कि लाजरस बाहर निकल रहा है पूरा कपड़ों से, सफेद कपड़ों से लिपटा हुआ, और वो वहां आ रहा है और वो जिंदा है, ऐसा दिखाया हुआ है। परंतु क्रिश्चियन धर्म के अलावा और ये कहीं बताया नहीं गया है, केवल ये यही दिखाया है। और भारत के लोग कहते हैं कि इससे हमारे महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे। क्यों? क्योंकि जीसस ने ये जो किया मिराकल किया, पर इस मिराकल का क्या महत्व? ये तो मिराकल था, उसी को एक को क्यों किया? बाकी भी तो थे, उनको तो नहीं किया? बहुत सारे आक्षेप लेते, बहुत सारा विरोध भी करते इस बात के लिए। महात्मा बुद्ध की भी कहानी है, महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री आती है, क्या कहती है? मेरा बेटा मर गया है, पति पहले ही मर चुका था, बेटा ही एकमात्र मेरा आधार था, वो मर गया। वो क्या कहता है? जाओ जाकर वो अनाज के दाने या बीज लेके आओ, सरसों के अलग अलग, तिल के बताते हैं कोई, किसके बताते हैं, वो बीज लेके आओ। वो सारे दिन भर में जाती है और सारे दिन भर में जिस जिस घर में जाती है, शाम तक उसको बोध होता है। वो ये प्रश्न अब छूट गया कि बच्चे को जीवंत करो। ये जो मिराकल है ये भारत का मिराकल है, वो जो है वो उधर का है, पश्चिम का, पूर्व पश्चिम से कई गुना अधिक गहरे तलों तक पहुंचा है अध्यात्म के। बुद्ध ने ऐसे कोई मिराकल नहीं कर दिया, ये तुम्हारा बेटा है, उधर जीसस ने कहा लाजरस कम आउट, तो लाजरस आ गया चलते चलते, और वहां से है कि गॉड रेजेस द डेड। बुद्ध ने वो नहीं किया। वो स्त्री भिक्षुनी बनी और बुद्ध के सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठों में से एक थी वो, जो उस परम निर्वाण की अवस्था तक पहुंची, क्योंकि उसे बोध हो गया मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, ये मैं क्या मांग कर रही हूं। तो ये भी एक बात है। बाबा ने क्या कहा? तुम चिंताओं से मुक्त हो गए। तुम्हारा क्या जीवन है? निश्चय के आधार पर निश्चिंत जीवन है। निश्चय, निश्चिंत, फेथ और निश्चिंत हो गए। और भी कोई बात कही है यहां पर? तुम्हारी भाषा बदल गई। पहले क्या कहते थे? मर जाऊं या तुम मर जाओ, या तो मैं मर जाऊं या तुम मर जाओ, ऐसा ये बहुत उसके लिए पति पत्नी एक आप एक दो से ऐसा करते कहते रहते हैं, या तो तुम मर जाओ या तो मैं मर जाता हूं जब बहुत झगड़ा होता है और जब लड़ाई करते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये भी एक बात है। एक वो एक व्यक्ति होता है ना, सीधा पागलखाने पहुंचता है और वो पूछता है, वो पागलखाने का जो हेड होता है ना, सुपरिंटेंडेंट, कि आपके यहां से कोई पागल भागा है? तो वो पूछता है क्यों, आपने किसी पागल को भागते हुए देखा है क्या? तो कहता है नहीं, मेरी पत्नी जो है ना उसको कोई भगा कर लेके गया है इसलिए पूछने आया हूं तो निश्चिंत जीवन, निश्चय के आधार वाला जीवन, निश्चित भावी के ज्ञाता। ब्रह्मा बाबा के लिए शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, निश्चित भावी के ज्ञाता थे ब्रह्मा, उसको पता था क्या होने वाला है, इसलिए तुम निश्चिंत हो। चिंताएं छूट गई, तन, ये सारी चिंताएं संसारिक पारिवारिक, तन की, धन की, मन की, सभी से तुम मुक्त हो। इस बात को भी हम अगर स्वीकार कर ले कि मैं चिंताओं से मुक्त आत्मा हूं, तो वो अपने आप सारा कुछ आने लगेगा। और भी कुछ रह गया है मुरली से ये एक ही मुरली चालू है, फिक्र करने वाले सब कुछ वेस्ट करते हैं। वो वहां पर बताया, सफल जो करते हैं ना, सफलता के सूत्र वहां पर बताया। अच्छा, ऐसे प्रभु फल, प्रत्यक्ष प्रभु फल खाने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान विशेष आत्माओं को, ऐसे बाप समान कर्मयोगी बन कर्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे और एक चीज है क्वालिटी और क्वांटिटी वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।